भगवान कृष्ण जो मथुरा में भी और साथ ही साथ गोकुल में जन्म ग्रहण किया। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, श्रीमद्भागवत इत्यादि में ये लिखा गया, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के 24 अवतारों की बात कहने के पश्चात बोले, ये सब अंश और कला हैं। राम, नृसिंह, कल्कि, वामन, परशुराम इत्यादि ये कोई अंश है, कोई कला है, किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। मथुरा में कृष्ण का आविर्भाव हुआ, जन्म नहीं हुआ, जन्म हुआ गोकुल में, जसोदा जी के गर्भ से पैदा हुए। मथुरा में जन्म नहीं लिया, गर्भ से पैदा नहीं हुए, 16 वर्ष की अवस्था जैसे परम सुंदर रमणीय रूप शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए आविर्भूत हुए, गर्भ से नहीं हुए। इसलिए यहां पर उनका जात कर्म, नाड़ी छेदन और बधाई उत्सव इत्यादि नहीं हुए, ये सब गोकुल में हुआ। गोकुल में जसोदा जी के गर्भ से ठीक 12 बजे जब यहां पर कृष्ण का आविर्भाव हुआ, उसमें परिपूर्ण कलाओं से स्वयं भगवान कृष्णचंद्र पहले जन्म लिया और इसके बाद में एक छोटी सी कन्या भी उत्पन्न हुई जिसको जोग माया कहते हैं। यही जोग माया कृष्ण की समस्त लीलाओं का संपादन करती है। इसलिए मथुरा में भी और वहां पर भी दोनों बातें ठीक हैं। भगवान के लिए एक साथ में दो क्यों, लाखों रूप धारण किया गोपियों के साथ में, रास में लाखों गोपियों के साथ में यदि लाखों कृष्ण बन सकते हैं तो दो कृष्ण का बनना, एक साथ में जन्म लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए समस्त शास्त्रों में तो बतलाया जो कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इन्हीं से समस्त अवतार उतरते हैं। किंतु एक बात है विचारणीय, आजकल साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, लोग अपनी बुद्धि की कसौटी पर भगवान को भी कसना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि यदि हमारी बुद्धि की कसौटी पर ये उतरे खरे जे ये भगवान है, तब तो हम इन्हें मानेंगे भगवान, अथवा भगवान नहीं मानेंगे। विशेष करके इस कलियुग में अपने को लोग बहुत बुद्धिमान समझते हैं। वो कहते हैं कि यदि कृष्ण भगवान होते तो भगवान तो स्वयं संकल्प है, जो कुछ संकल्प करते हैं वो हो जाता है, परम सत्यवादी हैं, परम सचरित्र हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान को कभी भूख नहीं लगती, भगवान व्यभिचारी नहीं है, तो ये सब तो देखा जाता है कृष्ण में, ये सभी दुर्गुण। एक तो पहले बात है कि कृष्ण यदि भगवान होते तो महाभारत युद्ध को रोकवाने के लिए स्वयं दूत बन करके दुर्योधन के पास में गए। यदि ये भगवान होते तो दूत बन करके गए और युद्ध नहीं रुक सका तो भगवान कहां रहे। इसलिए भगवान नहीं है लोग कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि जब उन्होंने जन्म लिया और व्याध जरा के हाथ से उसके बाणों से इनकी मृत्यु हो गई, तब भगवान कहां रहे। भगवान कभी छल छंद नहीं करते। फिर द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर से झूठ क्यों बुलवाया, जयद्रथ को अभिमन्यु के मारे जाने पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की मैं जरूर जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु उस समय में जब जयद्रथ छिप गया, सारे दिन युद्ध में भी नहीं मार सके, तो कृष्ण अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, यदि जयद्रथ का मैंने आज दिन भर में सूर्य के छिपने के पहले वध नहीं कर दिया तो मैं अग्नि में जल करके मर जाऊंगा, फिर जीवित नहीं रहूंगा। सूर्य के छिपते छिपते जब नहीं मार सके तो कृष्ण ने कुछ चतुराई की, अपने चक्र से सूर्य को छिपा दिया कुछ क्षणों के लिए। अंधकार जैसा होने लग गया, अर्जुन बोले जैसे अब मैं प्राण छोड़ रहा हूं। सीता सजा दी गई, अर्जुन वहां पर उपस्थित हुए, जब मैं आग में कूद करके मर जाऊंगा। कृष्ण बोले जे वीर लोग धनुष बाण को लेकर के अपने अस्त्रों को लेकर के मरते हैं, अस्त्र को छोड़ क्यों तू रहा, अस्त्र लेकर के तुम मरो। उन्होंने ले लिए और इतने में ही कृष्ण ने चक्र को हटाया और कुछ थोड़ा सा दिन उगाया। कृष्ण ने कहा मारो इसको, अभी एक क्षण विलंब नहीं करना है। दुर्योधन ने उस समय में जयद्रथ को बुला रखा, आ जाओ देखो अर्जुन मर रहा है, अब इसे आनंद की क्या बात होगी। किंतु इतने में ही सूर्य उगाया, कृष्ण ने मारो अभी इसको, देखते क्या हो। जयद्रथ, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन एक स्वार से बोल उठे ये अधर्म का युद्ध है, ये अन्याय है, संपूर्ण रूप से धोखाबाजी है, इसलिए अनीति हो रही है। कृष्ण ने कहा अभिमन्यु को मारने के समय अनीति नहीं थी, द्रौपदी की लज्जा हरण करने के लिए बीच सभा में उसके ससुर और सास और पति सभी लोग थे, धृतराष्ट्र भी अंधा था, गंधारी भी थी, उस समय अधर्म नहीं था, यह धर्म था उसको नंगा करना। भीम को मारना, विष देना यह धर्म था, पासे में उसको हरा करके झूठ मूठ का उसके सर्वस्व ले लेना यह धर्म है, मारो अभी देखो मत। और अर्जुन ने उसी समय बाण उठाया और झट बाण मारा, उसका सिर कट गया। किंतु उसका पिताजी का वर था कि ये यदि कोई मारने से भी मरेगा नहीं जब तक कि उसके सिर को मैं अपने हाथ से न फेंक दूं। शाम के समय में वो जयद्रथ का पिता सूर्य को जल दे रहा था, बस कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि ये सिर उसी के पास में फेंको। बस अर्जुन ने वो सिर को लिया अपने बाणों से और उसी के हाथों में फेंका जबकि वो जल दे रहा था, और उसे जल में देने में साथ ही साथ में आता है और वो फेंक दिया। फेंकने पर देखा कि क्या भारी सा लगा, अरे देखा जब मेरे बेटे का ये सी, किंतु तीर तो हाथ से निकल गया था, वो समाप्त हो गया। कृष्ण ने यहां पर भी कुछ धोखाबाजी का काम किया। फिर ये भगवान कहां, द्रोणाचार्य को मरवाने के समय में कैसे मारे गए, ये भी कुछ धोखे की ही बात है। दुर्योधन को भी जंघे के नीचे मारा गया, ये भी कृष्ण ने ही ऐसे टॉर्च ठोकर के भीम को दिखलाया। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये भगवान नहीं है। कुछ लोग आजकल तर्क करते हैं, बहुत से जाते हैं, समय नहीं है, नहीं तो मैं खूब अच्छी तरह से आप लोगों को बतलाता हमारा क्या कर्तव्य है, कृष्ण ने क्या उपदेश दिए, कैसे ये बातें ठीक हैं। कृष्ण आए थे इसलिए जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजम्। धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का दलन करने के लिए, साधु और शिष्टों की रक्षा करने के लिए कृष्ण आए। उनके सभी अवतार इसी तरह से आते हैं, किंतु इनका विशेष है। धर्म क्या, धर्म हम सनातन धर्म जो कहते हैं इसको हम लोग समझ नहीं पाते। शरीर के धर्म को सनातन धर्म नहीं कहते, इसके अंदर में भगवान का अंश, मम ईवांसो जीव लोके जीव भूतस, ये अंश जीव है। हम भगवान को भूल करके इस जगत में आए हैं, ये जेल खाना है, कारागार है। इसमें यदि कोई मनुष्य चाहता है जब मैं सुख भोगूं तो उसके समान मूर्ख और अज्ञानी जगत में कोई नहीं है। आज सतयुग से लोग चेष्टा करते हैं सुख पाने के लिए। रावण पा सका सोने की लंका पाकर, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, मेघनाद और जैसे वीर, कुंभकर्ण जैसा भाई, उसकी सभी घर सोने के बने, सुखी हो सका? इसलिए संसार में कोई नहीं सुखी हो सकता है, केवल वही सुखी हो सकता है जो ये स्वयं भगवान कृष्ण इनका भजन कर सके, तभी वो होगा। इसलिए आज से आप लोग प्रतिज्ञा करेंगे, आज से भगवान का कुछ भजन करेंगे। ये कहने में क्या लगता है कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, आप मेरे हैं, क्या लगता है? भगवान का भजन करना कुछ कष्ट नहीं है। इसलिए कृष्ण इस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आए थे। कृष्ण ने किसी को मारा नहीं, इस चीज को समझिए। कपड़ा पुराना हो गया, आज नकल बिना मारे ही तो हमको मरना ही है, और कृष्ण इस पुराने कपड़े को हटा करके यदि नित्य एकदम वैकुंठ यह शरीर गोलोक वृंदावन में उसको यदि पहुंचा दें, नित्य अजर अमर कर दें, उसे नित्य आनंदमय कर दें, रसो वैसा में उसको परिणित कर दें, तो इससे आनंद की बात क्या है? हमारा पुराना कपड़ा फट गया, उसे नया बदल लिया, मृत्यु इसी को कहते हैं। जन्म किसको कहते हैं? जब आत्मा एक शरीर को धारण करता है। मृत्यु किसको कहते हैं? उसको बदल करके भेज दूसरी नहीं जा, तब उसको मृत्यु कहते हैं। कृष्ण यदि हमको मरना ही है और कृष्ण ने उस पुराने शरीर को गंदे को यदि बदल करके पुतना को गोलोक वैकुंठ में गति दे दी, कंस जैसे दुराचारी को उसे मार करके जय विजय की गति दे दी, उसे अघासुर को परम मुक्ति दे दी, इस तरह से कृष्ण किसी को मारते नहीं है, उसे हतारी गतिदायक है, उसको गति दे देते हैं। इस धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे। एक बात समझिएगा, झूठ के लिए यदि आप सत्य बोलते हैं तो वो झूठी ही है, समझिए। कोई झूठ है, बेसिक उसका झूठ है। झूठ के लिए कथित सच भी बोलते हैं तो वो झूठ है, और सत्य के लिए यदि झूठ बोलते हैं तो वो परम सत्य है। ये एक दार्शनिक विचार है, साधारण लोग नहीं समझेंगे, तो अभी इसको सुन रखिए, समय अधिक नहीं है इसकी व्याख्या करने का। कृष्ण ने जो कुछ किया वो परम सत्य संकल्प है। वो जानते थे कि महाभारत युद्ध के बिना संसार के ये जितने दुर्गजन हैं, दुष्ट जन हैं, जो रामलीला में कुंभकर्ण और ये सब थे, वो मारे जाने के बाद में शिशुपाल दंत बकर इत्यादि राक्षस असुर हुए हैं, इनको मारे बिना सनातन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिए उन्होंने पहले ही संकल्प कर रखा था कि इन असुरों को मरवाना है और मारना है। इसलिए जबकि वो जा रहे थे दूत बन करके हस्तिनापुर में, द्रौपदी रोने लगी, सखे तुम जा रहे हो, आप तो भगवान हैं, आप जाएंगे जरूर सुलहनामा हो जाएगा, आपके इच्छा मात्र से हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। तो फिर मेरे ये केस कैसे बंधेंगे? हमने तो प्रतिज्ञा की है दुशासन के जंघे के रक्त से हमारा केस बंधेगा, तब मैं बांधूंगी, फिर इसका क्या होगा? कृष्ण ने उनके कानों में कहा, जब प्यारी सखी तुम्हारी बात सत्य होगी, हमारा संकल्प है कि महाभारत का युद्ध होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए प्रभु ने पहले ही संकल्प कर रखा था कि इनके मारे बिना जगत का उद्धार नहीं होगा, जगत में शांति नहीं आएगी, इसलिए वो उनके संकल्प के अनुसार ही ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा मत समझे कि कृष्ण यदि चाहे तो युद्ध नहीं रोक सकते, लाखों युद्ध को रोक सकते हैं, 1 मिनट में प्रलय कर सकते हैं, 1 मिनट में फिर उसको नया संसार बना सकते हैं, ऐसा समझिए। इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान इसको समझिए, उन्होंने कहीं झूठ नहीं बोला, उन्होंने अपने मुख में अर्जुन को दिखलाया, देखो सभी मरे हुए वीर हैं, अश्वत्थामा इत्यादि द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण सभी मरे हुए हैं, निमित्त मात्र भव सभ्यसाची, निमित्त मत बनो। इसलिए कृष्ण ने यहाँ पर भी झूठ नहीं बोला, कहीं भी झूठ नहीं बोले ने? इसको भक्त लोग समझते हैं, तत्वदर्शी लोग समझ सकते हैं, साधारण आदमी नहीं समझ सकता है। इसलिए बिना सत्संग के ये आदमी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग यदि कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं तो यही सबसे सर्वोत्तम उनके चरणों में पुष्पांजलि होगी कि हम आज से प्रतिज्ञा करेंगे जितने प्रकार के असदाचार हैं जितने प्रकार के आजकल मांस मछली अंडे इत्यादि जो हो रहे हैं अनाचार है, इस सब को छोड़ करके हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन करना कलिकाल में सबसे सुकर है, सबसे सहज है। दिन में रात में चलते फिरते उठते बैठते हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कलयुग में केवल कलयुग केवल नाम अधारा, उल्टा नाम जपत जगत जानी, उल्टा जगत उल्टा नाम मरा मरा किया और वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान में बन गए। नाम अलेत भव सिंधु सुखाही, अगर अगस्त ऋषि ने नाम लेकर के अवसार समुद्र को पी लिया, जनु ऋषि ने गंगा को ही पान कर लिया। नाम में इतना बल है, और युगों में तपस्या करना बड़ा भारी कठिन है भगवान को पाना, किंतु कलयुग में यदि एक बार भी यदि नाम कर लिया, विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें ये मत समझिए कि इसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण और राम तीन नाम नहीं है। यहाँ पर हरि अलग कृष्ण अलग और श्री रामचंद्र जी अलग नहीं है। हरे माने कृष्ण के चित्त को भी हरण करने वाली राधिका जी का नाम हरा है, इसलिए हरा माने से हो गया हरे माने राधिका हो गया, और कृष्ण से कृष्ण सबको जगत को जो आकर्षण करने वाले हैं वो, और राम माने क्या होगा, राधा रमयती थी राम, राधा ने रमण करते हैं समस्त जीवों के हृदय में, जो रमण करने वाले जो कृष्ण है यही राम है, इसलिए उपास्य तत्व सभी का एक होता है, इसलिए तीन उपास्य नहीं होते हैं। चाहे राम कहो या श्याम, ये तो कहने में ठीक लगता है, किंतु श्याम का जो भजन है इतना रसमय है कि रामचंद्र जी भी दूसरों को बर देते हैं कि हमारे कृष्ण लीला में गोपी बनकर के तुम आओगी तब तुमसे मुंह मिलेंगे। राम नहीं पूरा कर सकते, निसिंह जी रास नहीं कर सकते, रामचंद्र जी सखाओं के साथ में जूठा नहीं खा सकते, ये कृष्ण के लिए संभव है, इसलिए कृष्ण सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कौन सा दुर्भाग्य व्यक्ति है जो कृष्ण का शरण लेकर के उनका भजन नहीं करेगा, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही कलयुग का। वेदों उपनिषदों में ये कहा गया, कलिसंतों उपनिषद का मंत्र है, कोई कहते हैं कि ये पहले राम राम से होगा, राम नाम और कृष्ण नाम का कभी झगड़ा ही नहीं है, ये तो वेदों शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पहले हरे इसके बाद में कृष्ण, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसके बाद में हरे राम 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 हरे, ऐसा कहा गया है, इसलिए इसमें विवाद का कोई जी नहीं है। ऐसे कोई राम कृष्ण किसी का नारायण विष्णु कोई भी नाम ले, कोई हर्ज नहीं है, सभी हाथों में लड्डू है, किंतु फिर भी एक नाम का वैशिष्ट है, इसमें ब्रजरस भरा पड़ा है हरे कृष्ण में, जो एक के लिए किसी नाम में नहीं है। इसको समझने वाले गुरु परंपरा की धारा से शिष्य समझ सकता है, सभी नहीं समझ सकते, ये गोपनीय चीजें हैं, है ना। इसलिए कलयुग युग में ये महामंत्र का कीर्तन चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले हुए, इन्होंने इसी रूप में गाया, कृष्ण के समय में के बाद में नारद जी इसी नाम का उच्चारण किया। हमारे जितने भी गोस्वामी लोग हैं हरे कृष्ण से आरंभ करके किया, इसलिए इसको समझ करके आप लोग करेंगे सहज रूप में। मैंने बीच में कुछ बाधा दे दी, मैंने कुछ कहा सुंदर राग रागनी और कितने सुंदर इनके कीर्तन हो रहे थे, मैंने बीच में कुछ कड़वी चीज, एक तो नीम अपने आप तीती कड़वी और चढ़ गई नीम के ऊपर में, तो मैंने कुछ आप लोगों का समय बर्बाद कर दिया, अभी इनका समय सुनेंगे कीर्तन। किंतु हाँ, जन्माष्टमी के दिन आप लोग सभी लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे, अंततः एक बार सवेरे उठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कह करके अपना सब काम कीजिए, खूब ठाट से काम कीजिए, समझिए कि ये सारा संसार कृष्ण का है, मैं उसमें एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, लाभ हानि उनकी होगी हमारी नहीं। और यदि अपने को कर्ता मान लिया जो मैं करने वाला हूँ तो आपको बहुत दुख होगा। ये कर्म जो वस्तु कौशलम, ये कौशल है, सब प्रभु को मालिक बना करके उनका तुम बन जाओ और जो कुछ हो वो उसके लिए लाभ हानि लाभ हानि जीवन जो कुछ है सब वो मालिक है, आप कीजिए, और नहीं तो बड़े दुखी रहेंगे। संसार से तरने का यही केवल एक उपाय है। इन विचारों के साथ में आप लोग भगवान का भी भजन कीजिए और सुखी रहिए। मैं यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अब समय हो रहा है, अभी ये अभिषेक करने के लिए जाएंगे, मंदिर में ही करना। और आप लोग बैठे रहेंगे, कुछ लोग जो वहाँ वहाँ दर्शन करेंगे, और अभिषेक होने के बाद में एक ये बधाई का छोटा सा ये, या उसी बीच में अभी भी कर सकते हैं, अब समय हो गया, एक बधाई का कीर्तन कर देंगे। और कल बधाई का कीर्तन यहाँ पर शाम को होगा। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इसमें आएंगे और कुछ करेंगे। और अभी हाँ 10 बजे, हाँ 10 बजे से। और एक बात और, अब सभी लोग यहाँ पर ठाकुर जी का चरणामृत लेंगे और पंजीरी प्रसाद हाथ में दे देंगे, आप लोग सभी लोग ले करके जाएंगे। जल्दीबाजी का कुछ नहीं है। आप लोग, मैं समझता हूँ आप लोग यहाँ इतना आनंद पाएंगे जन्मभूमि में नहीं पाएंगे, वहाँ पर वैभव से ढका हुआ है। यहाँ पर हम सब बराबरी में अपने अपने भावों को उन्मुक्त होकर के खोलते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आनंद होगा, आनंद हो रहा है, वहाँ पर वो आनंद नहीं बरसेगा, यहाँ पर रंग बरस रहा है। और आगामी वर्ष के लिए मैं सभी को निवेदन करता हूँ, अभी से निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग जो आए अवश्य ही पधारेंगे। और कल हम बोल दिया है कल नंदोत्सव है, हम लोग 10 बजे हरी दधी कांदा होगा और फिर बधाई का कीर्तन होंगे और फिर शाम को भी, और प्रसाद यहाँ पर होगा। आप लोग सभी लोग निमंत्रित हैं यहाँ पर, जितने भी निमंत्रित अनिमंत्रित, 11-12 बजे से हम लोगों का भंडारा होगा। सभी लोगों को खुला हस्त से सभी को निमंत्रण है, यहाँ पर बैठ करके सभी लोग प्रसाद पाएंगे। लीजिए।